समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ है मेरी को होस्ट शिफाली। शिफाली, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार आकर्षिता, एंड हेलो डियर लिसनर्स। Now I know that this is that time of the day when you are either taking a short break to recharge your batteries before an evening full of activities or are slipping into an afternoon siesta after that heavy lunch. But now that you have tuned into our program, I would urge all our listeners to become alert and attentive as I, Shefali, and Akarshita, my co-host, we are going to take a parikrama and cover a whole range of elements, as she mentioned, reports, capsules, business, tributes and much more. So Akarshita, let's start with the news headlines first.
सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपालों को सभी आपराधिक मुकदमों से पूर्ण छूट प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 361 पर सुनवाई के लिए सहमत।
माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर आउटेज डिस्रप्ट्स मल्टीपल सर्विसेज इंक्लूडिंग एयरलाइंस एंड बैंक्स वर्ल्ड वाइड।
बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी हिंसक प्रदर्शनों में मृतकों की संख्या बढ़कर 39 हुई।
Center to identify 1 lakh sport talents under Khelo India Rising Talent Identification Initiative during first 100 days of Modi government's third term. And in Women's Asia Cup T20 cricket, defending champions India to play against Pakistan in Sri Lanka this evening. And now, time for our segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. So today, we'll talk about Microsoft Global Outage and Bank Nationalization Day.
Microsoft ki server mein dikkat aane se duniya bhar mein afra-tapri mach gayi hai. माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक है। इसके कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का इस्तेमाल आम लोगों से लेकर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर में होता है और इस आउटेज से एयरलाइन सहित कई उद्योगों का काम प्रभावित हुआ है और कई तकनीकी सेवाएं ठप पड़ गई हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने इस आउटेज की पुष्टि करते हुए कहा है कि इस समस्या को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में आई खराबी की वजह से कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन अचानक नीली हो जा रही है। और शिफाली, आज ये जो समस्या खड़ी हुई है कि जिस तरीके से जो यूजर्स हैं, दुनिया भर में इतने यूजर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के, हम देख रहे हैं कि हमारी जो एयरलाइंस से लेकर करके हर सारी सुविधाएं कैसे आईटी से कनेक्टेड हैं और कैसे इससे प्रभावित हो रही हैं और ये यूजर्स ने जो उनका जो कंप्यूटर है वो अपने आप ही रीस्टार्ट हो रहा है, जिससे बहुत ढेर सारी सेवाएं हमारी जो है वो प्रभावित हो गई हैं।
यस, एंड आई कम्प्लीटली अग्री विद यू आकर्षिता। वी लिव इन अ टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, इट्स टेक्नोलॉजी हैवी, फ्रॉम अ चाइल्ड टू एन ओल्ड पर्सन एवरीबडी यूजेज इट एंड ऑल द सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन इट। सो यूजर्स वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग बैंक्स एंड एयरलाइंस रिपोर्टेड वाइड स्प्रेड आउटेजेस ऑन Friday, hours after the technology company said it was gradually fixing an issue affecting access to Microsoft 365 apps and services. Now, the cause, exact nature and scale of the outage was unclear. Microsoft appeared to suggest in its X posts that the situation was improving, but escalating outages were still being reported around the world hours later. So, we can say that the whole world is in a way
माइक्रोसॉफ्ट सर्वर आउटेज का असर बैंक, अस्पताल, एयरपोर्ट, न्यूज चैनल्स, शेयर मार्केट और सुपरमार्केट सहित लगभग सभी जरूरी सेवाओं पर हुआ है, क्योंकि श्रोताओं, हम जानते हैं कि हम सभी एक तरीके से सॉफ्टवेयर का जो विंडोज का इस्तेमाल करते हैं और ये माइक्रोसॉफ्ट ही मतलब ये सॉफ्टवेयर निर्मित करती है, तो किस तरीके से जब हमारे लैपटॉप, हमारे कंप्यूटर्स नहीं चलेंगे तो हम अपने कोई भी काम आईटी से रिलेटेड उससे नहीं कर पाएंगे।
वी फील हैंडीकैप्ड।
हाँ, और ये जो है आज ही ये गड़बड़ी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई देशों में हड़कंप मचा रही है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने इसे जल्द ही ठीक करने का आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक स्थिति में सुधार नहीं हुई है।
जी, और टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक और सेक्टर है जो दुनिया को छोटा बना रहा है और वो है एविएशन सेक्टर। वो भी इम्पैक्ट हो चुका है। इन इंडिया चेक इन सिस्टम्स फॉर इंडिगो, अकासा एंड स्पाइसजेट एयरलाइंस आर डाउन नेशन वाइड। द एयरलाइंस अक्रॉस द ग्लोब रिपोर्टेड दैट देयर चेक इन सिस्टम्स आर एक्सपीरियंसिंग अ ग्लोबल आउटेज सिंस मॉर्निंग। दे आर करेंटली कोलैबोरेटिंग विद माइक्रोसॉफ्ट टू रिजॉल्व द इशू। मुंबई एयरपोर्ट हैज बीन द हार्डेस्ट हिट व्हाइल द इम्पैक्ट एट दिल्ली एयरपोर्ट रिमेन्स मिनिमल विद most disruptions occurring in Terminal 2.
भारत में भी इसका असर होने की खबरें आ रही हैं और मुंबई एयरपोर्ट और गोवा एयरपोर्ट पर सर्वर ठप होने की तस्वीरें सामने आई हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर चेक इन सिस्टम ठप होने के चलते यात्रियों को परेशानी हो रही है। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर माइक्रोसॉफ्ट आउटेज का अस्थायी रूप से असर हुआ है। दिल्ली एयरपोर्ट ने ट्वीट किया है कि वैश्विक आईटी समस्या के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से प्रभावित हुई हैं और हम अपने यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए अपने सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे उड़ान की नवीनतम जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन या ग्राउंड पर हेल्प डेस्क से संपर्क में रहें। लेकिन हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने इसे ठीक करने का आश्वासन दिया था शेफाली, और अभी इस स्थिति में सुधार हो चुका है।
जी, एंड नेशनली ही नहीं इंटरनेशनली भी बहुत इम्पैक्ट हुआ है इस चीज का। द आउटेज ऑल्सो कॉज द ग्राउंडिंग एंड कैंसिलेशन ऑफ फ्लाइट्स अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स। अब कॉज की बात करें तो ये आ रहा है दैट द ऑन गोइंग वाइड स्प्रेड आउटेज इज रिपोर्टेडली रिलेटेड टू यूएस बेस्ड साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइडर क्राउड स्ट्राइक। इट्स फाल्कन सेंसर इज इंस्टॉल्ड ऑन मेनी बिजनेस कंप्यूटर्स टू गैदर सिक्योरिटी डेटा। क्राउड स्ट्राइक इन अ स्टेटमेंट ऑन इट्स वेबसाइट सेड दैट इट इज अवेयर ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ क्रैशेज ऑन विंडोज होस्ट्स related to the Falcon sensor. Symptoms include hosts experiencing a bug check and blue screen error related to the Falcon sensor. The company said their engineering teams are actively working to resolve the issue. The IT issues are also affecting other countries, with outages reported from New Zealand and Japan. Microsoft said its outage started with a subset of its customers experiencing issues with multiple Azure services in the central US region. Azure is a cloud computing platform that provides services for building, deploying and managing applications and services. Separately, Microsoft said it was investigating an issue impacting various Microsoft 365 apps and services. So Akarshita, let's just hope that things get better because we are highly dependent on technology. And now moving on to the next day or the next topic for today, bank nationalization. So Akarshita, hum sab jante hain that banks play a crucial role in the growth of economy as they deal with money. Banks provide guarantee to keep our money safe and in return give interest. Banks also lend money to the people, institutions and others to set up businesses and for a variety of commercial and personal activities. So hum keh sakte hain ki banks hame apna sapna pura karne mein thoda yogdan nibha rahe hain. So therefore banks directly contribute to the various financial aspects of our lives.
और श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि करीब 52 साल पहले 19 जुलाई 1969 को देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। दुनिया के सबसे पुराने व्यवसायों में से एक मानी जाने वाली बैंकिंग प्रणाली भारत की आजादी के बाद से विभिन्न चरणों में आगे बढ़ी है। 1957 में 664 निजी बैंकों की केवल 5000 शाखाएं थी। आज देश में 12 सरकारी बैंकों, 21 निजी क्षेत्र के बैंकों, 43 क्षेत्रीय बैंकों और 46 विदेशी बैंकों की लगभग 1,40,000 शाखाएं संचालित हो रही हैं। और जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि जो हमारा जो बैंकों का डिजिटलीकरण हुआ है उससे हमें कितनी मूलभूत सुविधाओं में आसानी हो रही है, जैसे यूपीआई है और भी इससे बैंकों से संबंधित है, पेटीएम है, इससे हम किस तरीके से ट्रांजेक्शन कितनी आसानी से कर पा रहे हैं।
बिल्कुल, इट इज डिजिटलाइजिंग एंड मॉडर्नाइजिंग आवर ट्रांजेक्शन। यस, and the government decided to nationalize banks to encourage businesses in order to better serve the needs of the country's economy. Nationalization of banks was implemented under the Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings Act of 1970. The ordinance came into force on 19 July 1969 to better serve the needs of development of the economy in conformity with national policy objectives. In 2020, and this is important, listeners, so pay attention. In 2020, WhatsApp launched a UPI payment service in India. The rise of digital transactions and the growing popularity of QR codes among small merchants have hit the headlines, with temples receiving digital donations through QR codes.
और श्रोताओं, यूपीआई के जरिए आप बिल पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप किसी को ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, साथ ही सीधे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना या रिचार्ज भी कर सकते हैं। शिफाली, आज के समय में हम जो है ये सोच भी नहीं सकते कि अगर हमारे फोन में जो है कोई जीपे का ऐप ना हो या कोई भी ऐसे फोन पे या कोई भी ऐसा ऐप ना हो ट्रांजेक्शन का जिससे यूपीआई से संबंधित ऐप ना हो, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि आज हमारे पास जो वो छुट्टे की परेशानी, और अगर आपको है ना आपको 10 रूपये का ऑटो रिक्शा लेना है, ई रिक्शा लेना है, फुल्की खानी है, वो जो छुट्टे की समस्या होती थी वो अब नहीं होती है।
हमारे सारे वेंडर्स स्मार्ट वेंडर्स बन चुके हैं।
हाँ, जी। और जो है ये भी है शिफाली कि हम यूपीआई पे इस तरीके से एक तरीके से डिपेंडेंट भी हो गए हैं, क्योंकि आज हम देखते हैं कि हम कैशलेस एक इकोनॉमी है और बिना कैश के ही।
और जिस दिन इंटरनेट नहीं चले तो उस दिन तो हम बहुत बड़ी समस्या में भी पड़ जाते हैं। तो बस अब एडवांटेजेस बहुत है यूपीआई के, वाइड एक्सेप्टेंस है, 24/7 अवेलेबिलिटी है, डिजिटल बैंकिंग है, और क्या कुछ नहीं।
और सेल्फ बैंक ट्रांसफर आप कर सकते हैं श्रोताओं। ये भी है कि कितना कुछ, मतलब ये डिजिटलाइजेशन की, पहले हमें बैंकों में बड़ी बड़ी कतारें लगानी पड़ती थी, लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी, फिर हम पैसे जो है निकाल पाते थे, और आज जस्ट इन वन क्लिक हम पैसे ट्रांसफर कर देते हैं।
यस,
और श्रोताओं अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
तो बारिशों का मौसम चल रहा है, तो आइए इस चर्चे में हम एक खबर पढ़ते हैं। मॉनसून इन गोवा दिस ईयर हैज बीन अनप्रेसिडेंटेड। द कोस्टल स्टेट ऑफ गोवा इज नोन फॉर इट्स सीरीन नेचुरल ब्यूटी सिचुएटेड वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। बिकॉज ऑफ इट्स ज्योग्राफिकल लोकेशन, गोवा रिसीव्स मोस्ट ऑफ इट्स रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मॉनसून ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अरेबियन सी।
श्रोताओं आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
This year's state of Goa has received insufficient rainfall owing to the cooling trends compared to the previous years. This year, Goa has received almost 70% of seasonal rainfall in 1.5 months only. Goa experiences an average 230 cm rainfall annually, and as of July 17, Goa has received 223 cm since 1st of the June. As of the current situation, North Goa district has received excess of 50% rainfall, while South Goa district has received 47% excess rainfall.
Even though during this monsoon season till now, Goa recorded one of the most intense rainfalls in the recent past, more intensified rainfall is expected in coming days. Meteorologists are predicting setting of La Nina conditions are expected to prevail from July to September. La Nina is considered as opposite of El Nino. El Nino and La Nina are cool and warm places of recurring climate patterns across tropical Pacific Ocean. Generally, El Nina is associated with deficit rainfall during monsoon, while La Nina is associated with excess rainfall.
Southwest monsoon has been peculiar geographical climatic character of the Indian subcontinent, which plays significant role in the India's progress. As India is largely agrarian country, monsoon plays significant role in the India's developmental march, and it is equally important for the state of Goa. Tushar Jadhav for Parikrama, Akashwani Panaji, Goa.
And listeners, now we have a story about how heroes emerge in the toughest of times. The perennial flood situation in Assam brings to the fore the grave issue of finding pure and healthy drinking water to the people in the deluge-affected areas. However, a professor living hundreds of kilometers away in Tripura's capital, Agartala, has been playing the role of a good Samaritan to help get clean and hygienic drinking water.
और अब आइए जानकारी लेते हैं हमारे अगरतला के संवाददाता कुणाल शिंदे से।
The devastating floods in Assam poses myriad challenges before the people of that state. With flood water wreaking havoc, not only food but even getting clean and healthy drinking water is a huge challenge. It is a known fact that consumption of impure and contaminated water can have serious health issues. A professor of chemical and polymer from the Tripura University, Harjit Nath, took on the challenge of providing pure drinking water to the flood-affected people of Kachahar in Assam. Taking his own designed portable water purifier all the way to Kachahar and making use of it, Professor Nath's efforts came as boon to the distressed locals surrounded by floods all over.
Once I went, I found a lot of people, especially especially small children were there, and the water were given by the district authorities, but I found that it might not be that much pure to give it to small babies as well as pregnant people. So what it did is I installed my systems up there and we tried to give clean drinking water to the people, as well as we took our suitcase water system, which is solar based, and that water we specifically gave to the infants as well as the pregnant people.
Professor Harjit Nath first conceived the idea of developing a portable water purifier for the flood affected people after witnessing the alarming situation himself by growing up in Karimganj in the neighboring state.
Where I have seen floods occurring quite frequently, almost every year. You know, growing up, I was quite hesitant, like, how can I help those people? So I was thinking that might be a great opportunity for research, and we started working on that. In 2019, we filed the first patent, which happens to be a suitcase water purifier, where we had developed a very portable water purification system, which could be taken to any location, and using solar rays, you can operate the entire machine, and you can get clean drinking water.
Professor Nath's social service aptly fits with the famous saying that only a life lived for others is a life worthwhile, as it also takes back in time when he designed a robo during the COVID-19 pandemic to provide food and other items to the needy by adhering to social distancing. The exemplary contribution by Professor Nath contribute through a positive manner to the society.
Kunal Shinde for Parikrama from Akashvani Agartala.
And dear listeners, mouth-watering mango, the national fruit of India, has been growing for a long time in West Bengal. References of mangoes can be seen in ancient books and chronicles of India. There are many varieties of mangoes in the state: Malda, Murshidabad, Nadia, South 24 Parganas, North 24 Parganas districts produce varieties of mango.
Aayye sunte hain Kalyan Laha ki ye report.
Various indigenous varieties are facing extinction and commercially profitable ones are becoming popular. Indian Council of Agricultural Research, ICAR, is storing the local indigenous varieties of mangoes through its National Bureau of Plant Genetic Resources. In West Bengal, Bidhan Chandra Krishi Vishwavidyalaya, BCKV, is leading the mango research. BCKV scientist Dr. Dilip Kumar Mishra has informed that indigenous mango varieties like Kohinoor, Kohitur, etc. are being conserved by ICAR, and hybrid varieties like Pusha Shrestha, Pusha Surya, Amrapalli, Mallika are becoming popular in West Bengal. Mango farmers are being taught and trained by the Bidhan Chandra Krishi Vishwavidyalaya also. BCKV scientist Dr. Anamika Kaur has informed that through this training, farmers are getting aware of various types of pests and how this can be controlled. Mango is very much popular in West Bengal. Research in mango in ICAR and agricultural universities will not only preserve the indigenous varieties but also create many delicious hybrid ones. Kalyan Laha, Akashvani News, Kolkata.
And now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
In 1942, Mascarene joined the Quit India movement, and 2 years later she was elected as secretary of the Travancore State Congress. Annie Mascarene went on to serve as a member of the Travancore Cochin Legislative Assembly from 1948 to 1952. She became the first woman to become a minister in the Travancore Legislative Assembly.
She went on to represent Travancore Cochin in the Constituent Assembly also. Annie Mascarene died in 1963 on the 19th of July. We salute this great daughter of the soil. Mangala, 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 mangala,
oh. Mangala, 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 oh. Today we remember Mangal Pandey, who was born on the 19th of July 1827 in Balia district, Uttar Pradesh. His courage helped arouse the fire of independence in the hearts of native sepoys. Mangal Pandey was a sepoy of the 34th Native Infantry stationed at Barakpur. In 1857, the Britishers introduced a new Enfield rifle that required a soldier to bite off the ends of greased cartridges in order to load the weapon. A rumor spread that the lubricant used in the cartridges was either cow or pig lard. A belief arose among the sepoys that the British had deliberately used the lard on the cartridges. On March the 29th, 1857, Pandey tried to arouse his fellow sepoys to rise up against their British officers. Jagi, jagi hai, dharti sari, aur jaga, jaga hai, umbar. Jagi, jagi hai, nadiya,
सारी और जागा जागा है सागर जागो।
Mangal Pandey attacked two of those officers, attempted to shoot himself after having been restrained, and eventually was overpowered and arrested. Pandey was soon tried and sentenced to death. He was court-martialed and hanged at Barakpur on 8th of April 1857. After 1 month of this incident, on 10th of May 1857, sepoys revolted in Meerut, and that led to the outbreak of the First War of Independence in 1857. On 19th July 1905, partition of Bengal was announced by Viceroy Curzon. At that time, Bengal was the biggest province of British India and included present-day Bangladesh, Bihar and parts of Orissa. The British argued for dividing Bengal for reasons of administrative convenience, but it was closely tied to the interests of British officials and businessmen. The main British motives were to curtail the influence of growing nationalism and to split the Bengali people.
Before the partition was to be effected, the Congress arranged meetings where petitions against the partition were collected and given to British authorities. Large public meetings and demonstrations were organized, and novel methods of mass protest were developed. It was during this time that Krishna Kumar Mitra openly called for the first boycott of foreign goods through his journal Sanjivani.
The British did not listen to popular demand, and on the 19th of October 1905, Bengal was partitioned. People organized mass protests against the partition. Though the British wanted to divide people, people came back stronger, in unison, and the struggle that unfolded came to be known as the Swadeshi movement.
And now moving on to business news. Indian benchmark indices, which initially surged to fresh record highs, gave up those gains soon and lost near 1% at close in the face of a global sell-off. Snapping their winning streak of the last four consecutive sessions, the Sensex closed the day with a loss of 755 points or 0.93% at 80,588, and the Nifty ended at 24,525, down 275 points or 1.11%. In the global crude market, Brent crude is trading down at $84.86 per barrel. WTI crude is trading at $82.55 per barrel when reports last came in.
और श्रोताओं, अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल. श्रीलंका में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में आज वर्तमान चैंपियन भारत का सामना पाकिस्तान से होगा. ये मैच दांबुला में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा. टूर्नामेंट का पहला मैच ग्रुप ए में संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल के बीच हो रहा है. इस टूर्नामेंट में शामिल 8 देशों को 2 समूहों में बांटा गया है. भारत ने इससे पहले 2022 में महिला एशिया कप जीता था और अब तक 7 बार एशिया कप खिताब जीतने का रिकॉर्ड भारतीय टीम के नाम है. उधर न्यूजीलैंड में चल रही राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर के तलवारबाजों ने 1 रजत और 3 कांस्य पदक जीतकर भारत को गौरवान्वित किया है. इस बीच 26 जुलाई से शुरू हो रहे पेरिस ओलंपिक्स के लिए खेल मंत्रालय के मिशन ओलंपिक सेल ने एचएस प्रणॉय के ट्रेनर रोहन जॉर्ज मैथ्यूज को पेरिस में रहने के दौरान खर्च उठाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. और श्रोताओं, अब समय है उन व्यक्तित्व को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या फिर जयंती या जन्मदिवस. गीली उम्र बहाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है. छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है. जी हां, ये पंक्तियां तो सुनी ही होंगी आपने. आज गोपाल दास सक्सेना की पुण्यतिथि है. वे हिंदी साहित्यकार, शिक्षक एवं कवि सम्मेलनों के मंचों पर काव्य वाचक एवं फिल्मों के गीत के लेखक थे. वे सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रसिद्ध कवि थे जिन्होंने अपनी मर्म स्पर्शी काव्यानुभूति तथा सरल भाषा द्वारा हिंदी कविता को एक नया मोड़ दिया और बच्चन जी के बाद नई पीढ़ी को सर्वाधिक प्रभावित किया। जन समाज की दृष्टि में वे मानव प्रेम के अन्यतम गायक थे। भदंत आनंद कौशलायन के शब्दों में उनमें हिंदी का अश्वघोष बनने की क्षमता है। दिनकर के अनुसार वे हिंदी की वीणा हैं। आज अनेक गीतकारों के कंठ में उन्हीं की अनुगूंज है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं दर्द दिया है, प्राण गीत, आसावरी, गीत जो गाए नहीं, बादर बरस गयो, दो गीत, नदी किनारे आदि। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं फिल्म पुजारी से उनका लिखा ये गीत।
से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा।
And dear listeners, today is the birthday of Jayant Vishnu Narlikar, an Indian astrophysicist, Padma Vibhushan awardee, emeritus professor and founding director at the Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics, IUCAA. He developed with Sir Fred Hoyle the conformal gravity theory known as Hoyle-Narlikar theory. Apart from his scientific research, Narlikar is known as a communicator of science through his astrophysics, textbooks, science fiction novels, articles, radio and television programs. So thus, through his various fiction and non-fiction works, he is making science accessible to all. And for instance, he wrote this short story, The Adventure. The story is based on a historical event and tells us how Professor Gaitonde travels through time, thus combining science and history.
मेरी गोद में बैठी ओ लाडली, जब तू अपने चेहरे को मेरे हृदय पर टिकाती है तो बिजली की रोशनी सी मुझ में उड़ने लगती है भूली बिसरी यादों के पुलक। आज मलयालम भाषा की प्रसिद्ध कवित्री नालापत बालमणि अम्मा की जयंती है। वे महादेवी वर्मा की समकालीन थी जो हिंदी साहित्य में छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में से एक थी। नालापत बालमणि अम्मा की गणना 20वीं शताब्दी की चर्चित व प्रतिष्ठित मलयालम कवित्रियों में की जाती है। उनकी रचनाएं एक ऐसी अनुभूति मंडल का साक्षात्कार कराती हैं। आधुनिक मलयालम की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण नालापत बालमणि अम्मा को मलयालम साहित्य की दादी कहा जाता है। उन्होंने 500 से अधिक कविताएं लिखी। उनकी मुख्य रचनाएं हैं गौरैया, कलकत्ते का काला कुटिया, अम्मा, मुत्थासी। उन्हें भारत सरकार द्वारा 1987 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
And dear listeners, today is the death anniversary of Dave Carter, an American folk music singer-songwriter who described his style as postmodern mythic American folk music. He was one half of the duo Dave Carter and Tracy Grammer, who were heralded as the new voice of modern folk music. Carter's songs were often noted for their poetic imagery, spirituality and storytelling while retaining connection to the country music of his Southern American upbringing. Let's listen to When I Go by Dave Carter.
Under your wing, I will strike, feel like lightning when I go. I will bellow like the thunder drum, invoke the storm of war, a twisting pillar spun in dust and blood up from the prairie floor. I will sweep the foe.
आज ही जयंती है बलाई चंद मुखोपाध्याय की। वे विलक्षण प्रतिभा के धनी एक कहानीकार, उपन्यासकार, कवि, नाटककार एवं लेखक रहे हैं। दीर्घ 50 वर्षों में उन्होंने 60 उपन्यास, 586 कहानियां, हजारों कविताएं, 15 नाटक और अनगिनत लेख लिखकर बंगला साहित्य को समृद्ध किया।
And dear listeners, today is the birthday of Sir Brian Harold May, an English musician, songwriter, record producer, animal rights activist and astrophysicist. He achieved worldwide fame as the lead guitarist and backing vocalist of the rock band Queen. Let's listen to the song We Will Rock You.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षिता और शिफाली को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन करिए हमारी वेबसाइट www.newsonair.com पर।
तो मिलते हैं आपसे दोबारा। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।
नमस्कार।